भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः। भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः। भगवान श्री ब्रह्मानंदाय नमः।
आप सज्जन लोग सब आए हैं, नियम के अनुसार कुछ भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मुश्किल यही है कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, ना प्रवचन कर पाता हूँ, ना कोई भाष्यकार हूँ, ना कोई भाषण देने वाला कोई नेता हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सब जो भजन अगर हो रहा था यही सुन रहा था, आप लोग भी सब सुन रहे थे। हमारे शास्त्र में गीता को सबसे बड़ा माना जाता है, तो गीता में भगवान अपना मुंह से कहें कि नवधा यानी नौ प्रकार से भक्ति का लक्षण को विस्तार किया जा सकता है, जिसमें प्रथम है श्रवणं कीर्तनं विष्णु। ये लोग कीर्तन कर रहे थे प्रभु के नाम और हम लोग सब मिलकर श्रवण कर रहे थे, तो ये दोनों ही हम लोग और जो लोग गा रहे थे ये दोनों ही हम लोग भक्त हैं, क्योंकि भक्ति के ये प्रकाश हम दोनों में दिखा जाता है, कोई कहते हैं और कोई सुनते हैं। इन दोनों में से दोनों का ही विशेषता माना जाएगा। कहने वाला अगर ठीक से नहीं कहेंगे, गाने वाला अगर ठीक से नहीं कहेंगे, श्रोताओं जितना है उनके मन में वो प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। अगर गाने वाले सुनाने वाले बड़ा प्रेम से बड़ा आनंद पूर्वक सुना रहे हैं, श्रोता अगर मन नहीं दे पा रहे हैं तो श्रोता का मन में वो भी प्रविष्ट नहीं होगा, बल्कि वो जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो गा रहे हैं, उनके प्रति असद्भाव की प्रकाश होगा। फिर भी श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं। अभी मैंने यहाँ पर सुना है कुछ संगीत, वही चर्चा में अगर डूबे रहेंगे, उसी में ही तन मन लगा के सुनेंगे और घर में जाके मैं इसी को स्मरण करते रहेंगे, इसीलिए स्मरण है तीन नंबर के भक्ति में। भक्ति के प्रकार जो नौ प्रकार लिखा गया है उसमें तीन नंबर का प्रकार इसी है कि स्मरणम। स्मरणम का अर्थ सही है कि मैं यही जो सुनकर जाते हैं उसी को ही चर्चा अपने मन ही मन, या हो सके अपनी पत्नी का साथ, अपने बच्चों का साथ, अपने और बुजुर्गों का साथ यही चर्चा करेंगे, तो भी एक भक्ति के द्वार पर नहीं यही और एक द्वार पर प्रवेश कर सकते हैं। वस्तुतः हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, हम लोग सुन के आते हैं वही तत्काल वहीं बुला जाते हैं, हम वापस आकर उसे याद नहीं रख पाते हैं, जबकि सुनते हैं कि किसी के प्रति इसी प्रकार का कोई विद्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा प्रति बहुत सारे लोग हमारा मोहल्ला में विद्वेष भावना रखते हैं, क्योंकि हमारा लड़का लड़की अच्छा प्रतिष्ठित है, मैं जो कारोबार कर रहा हूँ वो कारोबार में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, इसके लिए मेरा मन ने कहा है कि ये लोग सब विद्वेष का है, विद्वेष भाव को रखते हैं, ना जाने वो लोग रखते हैं कि नहीं, लेकिन ये जब सुनकर आए कोई कथावाचक कोई प्रवचन महान जो आत्मा लोग देते हैं वो सुनकर आए कि विद्वेष भाव किसी के प्रति नहीं रखना है। मैंने सोच लिया है उसी समय तत्कालीन सोचता है कि मैं तो नहीं रखता हूँ, ये लोग रखते हैं, हमारा अड़ोस पड़ोस का जितना लोग रखते हैं। तो ईश्वर आप कृपा करके इन लोग के प्रति आप देखिए इन लोग का मन से भी देर भावना चली जाए। अर्थात इसमें कितना बड़ा घमंड की बात हो जाता है, अर्थात कि मैं तो ठीक हूँ, ये कितना बड़ा अहंकार की बात है, मैं ठीक हूँ, बाकी आप लोग जो ये जो है ये लोग ठीक नहीं है। जो लोग कथा सुनने के लिए गए हैं जाते हैं और जो संगीत भी गाते हैं, बड़ा तन मन लगा के कोई माथा हिलाता है, कहीं शरीर हिलाता है, कहीं तालियां लगाते हैं, जैसे कि एकदम वो लीन हो गए हैं। इसमें देखिएगा कई प्रकार के लोग हैं, एक तो सचमुच लीन हो गया है, लेकिन जब लीन हो जाते हैं वो ना मुंह हिलाता है ना तालियां देते हैं। कहा जाता है ये गागर को लेके गंगा जल भरने के लिए गंगा तट पर गए तो जब तक गागर भरती नहीं होता है तब तक भग 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 आवाज आता है, जब भरती हो जाता है उसको कितना भी दुबाओ कितना भी उठाओ वो चुपचाप रह जाता है, कोई आवाज नहीं। तो जो इसका मन तन मन जिसको लीन हो जाता है, चाहे भगवान की कथा श्रवण में, चाहे भगवान का कथा गाने में बोलने में लीन हो जाता है, वो ऐसा माथा मवा हिलाना या तालियां देना या देखना चाहो कि मेरा जो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो गा रहा हूँ कैसा तारीफ कर रहे हैं, लोगों का आँख क्या बोल रहे हैं, लोगों का चेहरा क्या बोल रहे हैं, ये देखने का कोशिश जो झांकने का जो कोशिश है, एकदम इसमें अहंकार का ही प्रकाश होता है, इसमें लीन होने का कोई भावना ही नहीं है। फिर भी लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और सुनते भी हैं घर वापस जाते हैं। इसी प्रकार आप लोग देखिएगा कि हमारा ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अगर कहा गया है, जैसे कि बनारस, जैसे कि इलाहाबाद, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये सब लिखा गया है, ये स्थान पर लोग जाते हैं। पहले तो कभी कदा लोग जा पाते थे, दुष्कर रास्ता भी रहा, इतना साध में नहीं रहा और बाकी जो साधन भी इतना नहीं रहा, सामर्थ्य भी नहीं रह माने कर पाते थे। लेकिन आजकल तो एक फैशन हो गया है अगर समाज में बोलने के लिए कि मैं गंगोत्री होकर आए हैं, मैं अमरनाथ होकर आए हैं, एक फैशन है भाई अमरनाथ होकर आए हैं, अमरनाथ जाना, अमरनाथ को दर्शन करना, ये गंगोत्री में जाके अनुभव करना। मैं भी गुरु कृपा से एक दफे वहाँ पर एक दफे कई दफे गए थे, जब प्रथम दफे जाने के लिए हम सोचे थे, गुरु जी से अनुमति प्राप्त किए, गुरु जी कहें देखने के लिए ना जाओ, जहाँ जाओगे वहाँ अनुभव करने के लिए सोचोगे। मैंने पूछा कि गुरु जी ये जो गंगोत्री है, गोमुख है, यहाँ देखने का भी क्या है और अनुभव का भी क्या है? तो कहें कि देखने का तो यही है, हिमालय जैसा विशाल पहाड़ है जिसमें से गंगा जी निकलती है और वो जो गंगा जी का जो जल, गंगा जल जो बही आ रही है, वो उसके जो तो आवाज़ मीठी से आवाज़ होता है, वो आवाज़ में कुछ सुनने का कोशिश करो, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ऊपर से नीचे आते हैं सफ़ेद रंग का और कहीं कहीं पर देखोगे कि बर्फ हो गया है, उसका अंदर से पानी बह रही है, देखने में तो सौंदर्य के लिए अपूर्व है, लेकिन अनुभव करने का ही है। गंगा कुछ बोल रही है, गंगा जी क्या बोलेंगे? अब बोलने अगर बोलेंगे भी तो मैं एक साधारण मनुष्य मैं क्या समझ पाऊंगा? नहीं, आप कान लगा के सुनोगे, वहां पर सिर्फ गंगा जी नहीं, वहां प्रकृति भी कुछ बोलती रहती है, जो सुनने वाला है जिनका कान एकदम ठीक है, मन अर्थ कान मतलब मन, मन जिसका ठीक है वो सुन सकेंगे। प्रथम बार जब मैंने गए वो गंगोत्री में, अरे ये तो इतना कड़क ठंडा है, उसमें ही तो सब मैंने चेतना हमारा लुप्त होते जा रहा था, उसमें सुनने का वहाँ और ये प्रयास करना भी मुश्किल था। एक दिन बीत गया और एक दो दिन रहने का है वहाँ पर, तो बड़ा अफसोस हुआ रात को, छी 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 यही ठंडा का चलते पूर्वांचल के आदिवासी लोग ये ठंडा इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा नए हो गया, चलो फिर भी कोशिश किया जाए। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर एकदम सीधा चले गए हैं जहाँ गंगोत्री में गंगा जी उतर के जा रही है। तो मैं वहाँ जाके थोड़ा बहुत आसन लगा के बैठ के गुरु जी का दिया हुआ मंत्र को जप करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं कुछ सुनने का कोशिश करूँ। हे प्रभु, हे गुरु जी, आप थोड़ा सुना दीजिए, मैं बहरा तो नहीं हूँ लेकिन अनुभव में शायद हमारा कुछ बहरापन है जिसके चलते मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अति शांति से सुन सान, आज के दिन में तो जैसा भीड़ ऐसा भीड़ नहीं रहा, मैं और मेरी पत्नी दोनों जाके बैठे और कुछ देर बाद जैसा लगा कोई गुनगुना रहे हैं, आयुर्नश्यति प्रतिदिनं, अर्थात तुम्हारा आयु प्रतिदिन घटते जा रहा है। वस्तु तो ये बहुत सत्य बात है, ये बच्चा का आयु है अभी 8 साल। बड़ा गदगद होकर हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू करके हम लोग ये मनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर सोचने का कोशिश करूंगा तो क्या लगेगा कि इनका पूर्ण जो आयु काल है, आयु काल से 8 साल घट गया। आनंद होने के बाद नहीं है, ये दुख की बात है कि 8 साल बेकार घट गया, लेकिन हम लोग हैप्पी बर्थडे टू करके तालियां लगाते हैं। यही नियम है और इसी में फंस जाते हैं हम लोग। फिर मन लगा के सुने, आयुर्नश्यति प्रतिदिनं जाति क्षयं यौवनं, अर्थात हमारा यौवन, हमारा जो शक्ति, जो स्ट्रेंथ, वो दिन प्रतिदिन वो भी क्षय होते जा रहा है। ये नौजवान लोग जिस प्रकार से अभी काम कर सकते हैं, हम बूढ़े लोग इन लोग के साथ इतना तेजी से इतना जोर कदम से हम लोग चल भी नहीं पाएंगे, काम करना तो दूर की बात है। प्रत्यायन्ति गता पुनरनधिवसा, जो दिन आज बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। बड़ा अफसोस हुआ काल बीत गया, ये काल क्यों नहीं सुनाई पड़ा, काल भी कुछ कर लेते थे, क्या कर लेते थे वो दूसरी बात है, लेकिन गुरु जी के निर्देश के अनुसार कुछ तो करते थे, कम से कम कुछ अपना मंत्र को तो जप कर सकते थे, हो सकता है कि इससे भी अधिक कुछ अच्छा सुनाई पड़ते थे। प्रत्यायन्ति गता पुनरनधिवसा कालो जगत भक्षक, अर्थात ये काल महाकाल समय एक दिन पूरा जगत को खा लेंगे। वस्तु सही सही बात है, लक्ष्मी स्तूय तरंग भंग चपला, लक्ष्मी स्तूय तरंग भंग चपला, ये लहर जो आती है एक के बाद एक, एक के बाद आता है और मिट जाती है, तट पर आके लक्ष्मी, ये लक्ष्मी देवी ये भी इतना ही चंचल है, ये आता है भी चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लक्ष्मी स्तूय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवनम जीवनम, अर्थात जो बिजली जो चमकते हैं देखने से डर जाते हैं, लेकिन पूरा जगत आलोकित हो जाता है। अंधेरा में अगर बिजली को चमक आएगा तो दिखाई पड़ेगा कितना भी अंधेरा हो, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन जो कुछ दिन के लिए चमकेगा उसके बाद और भी मिट जाएगा अंधेरा में। विद्युत चलन जीवन, अतः तुम तन मन लगा के प्रभु से कहो कि प्रभु दासो हम शरणागतो, मैं आपका दास, मैं आपका शरणागत हूं। अब ये शरणागत बोलना, ये तो शब्द है, दास बोलना ये भी शब्द है। सभी लोग कहते हैं, विशेष करके खास करके जिन लोग दीक्षित है वो लोग तो कहते ही हैं कि गुरु जी मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, कहिए मेरा लिए आओ क्या सेवा है, मेरा लायक क्या सेवा है और क्या सेवा तुम कर सकोगे। ऐसे एक स्थान पर मैं रहता हूँ जमशेदपुर कालीबाड़ी में, जो कालीबाड़ी में डेली हजार से ऊपर यात्री लोग आते हैं, आके प्रसादी चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, चंद्रमित देते हैं। बस इतना जल्दी उसमें है, अगर पंडित जी थोड़ा बहुत वो प्रसादी चलाने में थोड़ा बहुत दो मिनट देर कर देगा, पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए भाई, कितना सारा काम पड़ा हुआ है, बड़े मुश्किल से आने पड़ा। पंडित जी तो जल्दी कर दिए हैं काम, पानी का छिड़काव लगा दिया है, उनको थोड़ा बहुत प्रसाद आ गया, बाकी प्रसाद वापस कर दिया है। बाहर आके, अरे अग्रवाल जी क्या बात है, अरे कब से आपको ढूंढ रहे हैं, वहां पर बहुत जल्दीबाजी रहा, लेकिन यहाँ आके अग्रवाल जी से मिला तो बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ, बोल के वहां बैठ गया और बात करने लगा। और वहां देवी जी का सामने जाके थोड़ा बहुत मन लगा के चढ़ाओ, हे देवी जी ये तो ये है, ये आप तो नहीं, आप तक नहीं पहुंचेगा इसका, लेकिन इसमें जो हमारा भाव है समर्पण का, निवेदन का जो भाव है, आप कृपया उसको ग्रहण कीजिए। ये बोलने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि जल्दी आए ना, बड़ा मुश्किल से काम निपट के मैं आया हूँ। यही देखते हुए इसमें क्या तन लगा के ये करेगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं करेगा, मैं नहीं जानता हूँ, सोचता नहीं हूँ कि आज मैं जीवित हूँ। हो सकता है आजकल दिन में तो ये तो बड़ा आसानी से मृत्यु आ जाती है, एक तो एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, दूसरा ये सामाजिक जो तनाव स्थिति है, कब किसका जान चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसा जो महात्मा लोग लिख कर गए हैं ये तो सुंदर और सुंदर भावना से लिखे हैं, विषय विकार मिटाओ, ये विषय विकार मिटाओ बोल के वो जाना एकदम गदगद होकर बात करते हैं। अगर विषय विकार मिटा दें तो दुकान में जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा, विषय विकार हमारा मिट गया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अगर पाप हरो देवा तो पाप हरो देवा अगर जब हम कहेंगे तो मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। क्या पाप किए हो, एक पाप के बारे में बताओ। ऐसा स्थान है हम लोग का, वो है हिंगलाज, जो अभी हमारा भारत भूमि में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया है। हिंगलाज एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर एक देवी मूर्ति, देवी का मंदिर है, वो पीठ स्थान है, वो आदि पीठ बोला जाता है, जैसे कि बावन पीठ है हमारा भारत भूमि में। बावन पीठ के बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे, बावन पीठ मतलब यही है कि महाराज दक्ष अपने कोई यज्ञ कर रहे थे, बेटा जरा उसको थोड़ा इधर करो नहीं तो आँख पर इतना आता है, तो हाई तब के पिताजी जाके शिव जी के पास कहें आप देख नहीं पाएंगे, देखिए ये दस दिशा में मेरा रूप देखिए। इसी प्रकार से उन्होंने दस दिख में दस महाविद्या को दिखाया, कोई काली तारा महाविद्या सूरसी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता विद्या धुमावती तथा विद्या धुमावती तथा मातंगी बगला सिद्ध विद्या से मातंगी कमलापिता। इसी प्रकार से दस महाविद्या दस दिश में दिखाया तो शिव थोड़ा बहुत प्रभावित हो गए, ठीक है लेकिन मेरा बाया अंग फड़फड़ा रहा है, थोड़ा कोई अमंगल का आशंका है, कोई बात नहीं, मेरा जितना साथी लोग आपके साथ जाएंगे, नहीं 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 इसी चलते पिताजी का इतना क्रोध है, आप इन लोग को छोड़ दीजिए, वो तो चले गए हैं डोली में बैठ कर। शिव जी तो चिंताजुक्त तो होकर ही अनुमति दिए और साथ ही साथ अपना अनुचर वृंद को भी भेज दिए हैं। सभी जी वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, दक्ष प्रजापति ने मुंह फिरा दिया है, फिर वो जाके प्रणाम की कि पिताजी मैं आपका दुहिता हूँ, आपको प्रणाम कर रही हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम मत छो मां, तुम ये जगत स्थली में तुम रहो मां, क्योंकि ये उचित नहीं होगी। तुम्हारा जो तुम जिसको पति मान के घर छोड़ा है, मुझको छोड़ दिया है, वो तो ऐसा ऐसा है, वो है सो है, सिर्फ निंदा में एकदम मुखर हो गया है। और जितना ये शरीर शरीर स्थित आत्मा को मैं त्याग देना चाहता हूँ, बोल के वो ध्यान में बैठ गई और अग्नि आके उनको स्पर्श करके उनको पूरा ये कर देने का कोशिश किया। लेकिन जैसा ही वो बैठ गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, वो जो अंचल आए थे वो जाके शिव जी के पास खबर दिया। शिव जी का क्या बात है, ऐसा ऐसा हो गया, और तब तो बड़ा अनाथ हो जाएगा दुनिया में। इस प्रकार से सती को अपमानित किया और बहुत लोग इसमें बढ़ावा दिए, बड़ा अन्याय हो जाएगा, बड़ा अन्याय 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 हो गया है। आज इसके चलते ये भूमंडल को बड़ा अनर्थ दिखाई पड़ेगा। वहां पर गए जाके, दक्ष प्रजापति वहां पर यज्ञ कर रहे थे और कुछ मुनि लोग थे। शिव जी सीधा अपना जटा से एक जटा उखाड़ कर वहां फेंके और अपना पैर से दबाया। भैरव भवा, भैरव का जन्म हुआ है, और भैरव को कहें कि ये यज्ञ नाश करो, ये मूर्ख जानता नहीं है, दक्ष प्रजापति जानते नहीं है, शिव है ज्ञान स्वरूप, शिव है अंधकार के अज्ञान के नाश कारक, ये अज्ञानता नाश नहीं होने से, ये ज्ञान नहीं आने से कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए अज्ञान ये मूर्ख, ये मूर्ख को अभी हत्या कर दो। भाई अब आपका मिलते ही साथ साथ जाके उनका शरीर से सर को अलग कर दिया है। इधर उधर जो मुनि लोग जो बड़ा बड़ा बात कर रहे थे उन लोग को भी मार डाला है। थोड़ा बहुत मुस्कराया था ब्रह्मा जी, उनको मारने के लिए तैयार किए, बड़ा मुश्किल से उसको रुका गया है। भाई ये विधि है, ये हमारा सृष्टिपति है, इनको तुम मारो मत, इनको मारने के लिए हुक्म नहीं किए शिव जी। और क्या किए, अपना पत्नी का शरीर अपना कंधे पर दे दिए हैं और बाएं दाएं हाथ में त्रिशूल लेकर तंडप नृत्य करते हुए बोम बोम इस प्रकार बोलते हुए वो सीधा उत्तर पश्चिम दिशा में चले गए। और इतना उनका नृत्य में इतना ये आया है जिसके चलते भूमंडल में भूकंपन आना शुरू किया है और त्रिभुवन में हाहाकार मच गया है कि आज सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुंदर धरित्री, इतना सुंदर सृष्टि, तो ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतित हो उठे हैं और विष्णु जी से कहें कि आप तो रक्षा करता है, पालन करता है, आप ये सृष्टि को रक्षा कीजिए, नहीं तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मतलब ये बोला है, क्या नाम क्या हमारा, विष्णु जी कहें कि मैं तो उनका सामने जाने का हिम्मत का, तब वो शक्तिहीन हो भविष्य और सब बन जाएगा। वर्तमान स्थिति इस प्रकार की है। तो सब देवता मुनि ऋषि तपस्वी लोग मिलकर उन्होंने अनुमति दिए कि हे विष्णु भगवान आप रक्षा करो, रक्षा करो। विष्णु जी दूर से अपना सुदर्शन चक्र को चलाया, तो वही हिंगलाज बोल के एक तीर्थ है, वो शायद अफगानिस्तान में होगा अभी, वही हिंगलाज बोला जाता है, वहाँ जाके उन्होंने चक्र चलाया तो चक्र में उनका ये जो ब्रह्मरंध्र होता है ये वहाँ पर गिरा है। थोड़ा बहुत हल्का लगा तो शिव जी फिर वहाँ पर रुके और तांडव नृत्य से अपने को थोड़ा बहुत रुके और वहाँ पर फिर एक जटा फेंका और भैरव भव, वो भैरव का जन्म हुआ है। उनको कहें जब तक सती अंग यहाँ पर रहेगा तब तक उनके रक्षा हेतु तुम यहाँ पर रहोगे। इसी प्रकार से काटते 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 उन्होंने वही आसाम हमारा उसको क्या नाम कामाख्या, कामाख्या पहुंच गए हैं। कामाख्या देवी का वहां जाते अंत हुआ है। इसी बीच में एकाउंट पीठ बन गया है जिसमें साउथ में भी एक पीठ है, हमारा पूरी धाम में भी एक पीठ है। इसी प्रकार से एकाउंट पीठ बन गया है। तो ही हिंगलाज जो पीठ स्थान है वो पीठ स्थान पहुंचने का बड़ा दुष्कर रास्ता है, आजकल तो जहां ही लोग छोड़ दिए हैं। तो जब कठिन से कठिन रास्ता को पार होकर वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर एक तो कूप रहता है। कूप मतलब पानी का ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कीचड़ में भरा हुआ है। स्वाभाविक रूप से वो कूप में बुट 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 ऐसा आवाज होता है, और कुछ वो उसको क्या बोलता है, बुट बुट उठता है। तो लेकिन वहां पर जब लोग जाते हैं, वहां जाके अपना पाप को स्वीकार करना पड़ता है। जो लोग उसको पास कर पार करके जाएगा, जो पाप को स्वीकार नहीं करेंगे वो बंद हो जाएगा। जब तक वो आदमी वहां पर रहेगा बंद हो जाता है। ऐसा हकीकत है, ये देखने को मिला है बहुत सारे लोगों को। तो वहां जाके और दो चार आदमी है सामने, इन सबों का सामने अपना पापों को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। बहुत कम लोग कर पाते हैं और कम लोग पहुंच पाते हैं, वहां से वापस चले आते हैं। क्योंकि भाई दरकार नहीं है इस प्रकार का, अगर ये चुप हो जाएगा लोगों ने टोकेगा, लोग ऐसा ही समझ लेगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, इससे अच्छा है कि नहीं जाऊं, मत जाओ वहां पर। तो पाप हरो देवा, ये जो है ये पाप कैसे हम, तो आप पाप के बारे में तुम्हारा ज्ञान नहीं है कौन से पाप है और कौन से पुण्य है। पाप पुण्य को विचार वही कर पाते हैं जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन पवित्र हो गया है, महात्माओं का साथ संग करते हैं। ये हमारा भारत भूमि में महात्मा का कोई कमी नहीं है, आज भी बहुत सारे महात्मा भारत भूमि में है। ये पवित्र तीर्थ भूमि है, कितना सारा तापस, कितना सारा मुनि ऋषि योगी हो यहाँ पर जन्म लिए हैं, अभी भी वो लोग विचरमान है। कभी भी अगर आप जाइएगा हरिद्वार में, जाके भोर रात पर उठिएगा, देखिएगा वहाँ पर कितना सुंदर वातावरण हो जाता है। अभी भी बनारस जाइए इतना। तो यही हमारे मन की स्थिति, यही हमारे समाज की स्थिति। ये समाज को सुधारने के लिए कोई एक महात्मा, उस जमाना में महाभारत का जमाना में एक कृष्ण आया, जो कि अर्जुन को सुनाया, धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे विनाशाय दुष्कृतम परित्राणाय साधूनाम। भाई इतना सब बोलने का क्या ध्यान, आप भगवान है, आप क्यों नहीं कहकर गए कि इस दुनिया में और पाप नहीं होगा और लड़ाई नहीं होगी, आज से ये खत्म हो गया है। ये नहीं कहकर उन्होंने कहा कि जदा जदा ही धर्म ज्ञानी भवति भारत, जब जब धर्म के ज्ञानी होती रहेगी मैं आऊंगा। तो कौन आते हैं, किस रूप से आते हैं, भगवान आते हैं, ये भी पहचानना मुश्किल है, लेकिन आते हैं तो जरूर। सपना अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत प्राण देके हम लोग जीवित रह पाता हूँ। हम लोग कुछ लोग तो भगवान के ऊपर आस्था रख के चलते भी हैं, रोजाना जाके चाहे गड्डी में चाहे ऑफिस जाने के पहले भगवान को प्रणाम करते जाते हैं, और रोजाना मैं लोग पाठ भी करते हैं, पाप हर वो देवा पाठ भी करते हैं, जाके मंदिर में प्रणाम करते हैं, सर्व मंगल मंगल ईश्वर सर्व आशीर्वाद के, ये सब करते भी हैं। तो ये कम से कम इसमें थोड़ा बहुत मन को हटाकर, क्योंकि आपका तो परिवार, आपका संसार, आपका समाज ये तो रहेगा ही, इसमें से कब ना जाने आपका ये प्राण चले जाएगा। क्षण भर के लिए ईश्वर में प्राण लगाने का कोशिश करो। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सक्षमात्मन निवेदनं। एक बहुत बड़ा बड़ा बात है इसमें, तो अगर इसी के ऊपर आधार, इसका आधार करके मैं बोलना शुरू करूंगा तो एक दिन में तो होगा ही नहीं, कितना दिन लग जाएगा एक ही यही लाइन के ऊपर प्रवचन करने में। वस्तु तो बात यही है कि मैं मन लगाकर ईश्वर को कम से कम एक सेकेंड के लिए, क्षण भर के लिए ईश्वर को नाम मैं, उस समय मेरा मन में कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई भावना नहीं रहेगी, सिर्फ ईश्वर और मैं और ईश्वर, यही चिंतन में कभी हम लोग कर पाएंगे तो तो हमारा जितना आज के दिन के जितना आज तक का जितना पाप मैंने किया है धुल जाएगा। कहा जाता है कि गंगा जी में नहाने से हजारों जन्म का पाप धुल जाता है। तो कितना हजारों साल से कितना लाखों यात्री ने वहां पर पहुंचे और गंगा जी में नहाए, तब तो हमारा भारत में कोई पापी है ही नहीं, सभी पुण्यवान हो गया है। लेकिन ऐसा कर से एक वचन से पाप नहीं धोएगा। मैं वही मन लेके हम डुबकी लगाएंगे तभी तत्काल के लिए हमारा पाप क्षय हो जाता है। साथ ही साथ डुबकी लगा के ऊपर उठने का था इतना समय में फिर पाप मैं सोचता हूँ, तय चिंतन करता हूँ और उस समय और चिंतन दूसरा कुछ चिंतन आ जाते हैं कि हमारा गाठी जो रख गया है वो है कि नहीं, वो चप्पल चोरी हो गया कि नहीं, क्या जाने उसके पंडा अभी क्या कितना मांगेगा, कैसे पंडा को फांकी देके चल सकते हैं। इसी प्रकार से साथ ही साथ डुबकी लगाने का माथा उठा नहीं तब से शुरू हो जाता है। यही मैं सिंचाई इसके चलते पाप को धोना बड़ी कठिन है, फिर भी नित्य प्रतिदिन कोशिश करना है। जैसा संगीत गायक लोग हर दिन इतना सुंदर बड़ा बड़ा गायक लोग है, क्या वो कहते हैं क्या नाम क्या अपना अमजाद अली खान, पंडित रविशंकर और कौन कौन सब है, तबला में कौन है, ये सब है हैं? तो ये सब लोग है, लेकिन ये लोग मशहूर है, ये लोग का ये सुनने के लिए हजारों लोग जाके जुटते हैं और भारी दाम देके टिकट भी खरीदते हैं। लेकिन ये लोग को भी डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसीलिए इसको डेली प्रैक्टिस का जरूरत होता है। बच्चे को जैसा सिखाया जाता है कि रोजाना अपना पाठ को अपना जो पढ़ने का जो है स्टडी करते रहो और लागू करते रहो, इसी प्रकार हम लोग को भी डेली भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और नाम लेते हैं सर, सभी लोग लेते हैं, लेते नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस प्रकार से मत लो। एक बार हनुमान जी, एक बार विष्णु जी, एक बार दुर्गा जी, इसी प्रकार से भटकाओ मत, एक स्थान में मन रखो कि हाँ इसी में ही हमारा तृप्ति, इसी में हमारा मुक्ति, इसी में हमारा सब कुछ। कोई भी एक देवता को चुन लो, जैसा मन चाहे, 33 को देवता है, कोई भी देवता को चुन लो और उसमें मन लगा के तुम मन लगाओ। मैं तो देखता हूँ बहुत कुछ कि हमारा लड़की का शादी करने का है तो एक दूल्हा, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, 10 लड़का देखते हैं, 10 लड़का के साथ तो लड़की का शादी नहीं होगी, एक ही लड़का मैं चुनूंगा और लड़की उसी को मान लेगी कि यही मेरा पर है। इसी प्रकार हमारा है बहुत सारा देवता है, काली जी है, दुर्गा जी है, विष्णु जी है, भोला महेश्वर है, हनुमान जी है, आजकल फिर शनि भगवान है, सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी है, कितना साल को पूजन करो, कितना सारे को याद करो और को मन भटकने वाली बात हो जाता है। ठीक है, जो तुम्हारा परंपरा है उसको निभाते चलो और एक को स्मरण करते हुए चलो। परंपरा को निभाने का वास्ते यही है कि हमारा घर में लक्ष्मी पूजन होता है उसको करो, करने में वही है, लेकिन तुम्हारा मुख्य है वही जिसको तुम मानते हो, जिसको तुम जानते हो, उसी का चिंतन में मन लगाना, यही है मुख्य है। बाकी जो परंपरा में है वो सब करो, अगर सरस्वती का थोड़ा बहुत पाठ करना है कर लो, यही अगर तुम्हारा परिवार में है प्रचलित है इसको कर लो, लेकिन एक को मान के चलो। एक को मान के चलने से तुम्हें शांति मिलेगी और तुम संतुष्ट भी हो पाओगे और तुम्हारे मन में जो स्थित जो आशा है वो भी सफल हो जाएगी, सफल काम हो जाओगे। बहुत धन्यवाद।
सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यो स्त्रायिनो देव ब्रह्मानन्दं नमस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यो स्त्रायिनो देव ब्रह्मानन्दं नमस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ती समन्विते भयेभ्योस्त्रायिनो देव ब्रह्मानन्दं नमस्तुते।